नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सब आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पहला तिमोथियस नामक पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कदम राहों में इसीलिए ना सोता दिन रातों में, फिसले ना कभी कदम राहों
मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला तिमोथियस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस तिमोथियस से कहता है कि कलीसिया में एक सही शिक्षा देना है जिसमें प्रेम हो, विश्वास हो, और इसके साथ साथ उसने हमें यह भी बताया कि हम अपने कर्मों के द्वारा उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें और उससे आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे अत्यंत प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपकी निकटता में आकर आपके वचन का अध्ययन कर सकें। यद्यपि कि हम लोग दूर दराज में रहते हैं, जंगल पहाड़ गांव में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके सच्चे वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से एक साथ हम कर सकते हैं। आज जब हम तीमुथियुस के पत्री से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते और सीखते हैं, हम उसे अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हम में से हर एक को हमारी बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, शैतान के छल प्रपंच से आप हमें बचाइए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो इस समय बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं। प्रभु जी, आप उन्हें शांति दीजिए और उन्हें उनकी बीमारियों से भी छुटकारा दीजिए, ताकि वे समझने पाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनके जीवन में आशीष देना चाहते हैं। आज के अध्ययन पर हम आपकी आशीष मांगते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, कुछ यहूदी विश्वासी बल देते थे कि व्यवस्था पालन के बिना उद्धार अधूरा है। अतः पौलुस तीमुथियुस को समझाता है कि व्यवस्था मात्र एक यंत्र है जो मनुष्य को पाप का बोध करवाती है। उद्धार तो केवल मसीह यीशु में ही है। जैसा कि हमने देखा, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जी हाँ, सिर्फ यीशु के द्वारा ही उद्धार है, क्योंकि सारे मानव जाति के लिए केवल एक ही व्यक्ति यीशु हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और कोई दूसरा व्यक्ति बलिदान नहीं हुआ। प्रभु यीशु क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और आज भी वह जीवित है, और यही कारण है कि वह उद्धार देने में सक्षम है, क्योंकि वह परमेश्वर है। तो आइए आज हम आगे बढ़ें। पहला तीमुथियुस की पत्री एक अध्याय उसके 9 और 10 पद को पढ़ें। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि व्यवस्था धर्मी जन को नहीं दी गई थी, वह जो मसीह यीशु में विश्वास करके धर्मी गिना गया है उसके लिए नहीं। यह मनुष्य तो परमेश्वर के समक्ष एक अधिक ऊंचे स्थान पर बुलाया गया है। व्यवस्था कानून तोड़ने वालों के लिए थी। वचन में लिखा है, तू हत्या मत कर। यह आज्ञा परमेश्वर की संतान के लिए नहीं थी जिसके मन में हत्या का विचार ही न हो। वह तो किसी को हानि पहुंचाने की अपेक्षा भलाई ही करने का विचार रखता है। यह आज्ञा उस मनुष्य के लिए थी जो मन से ही हत्यारा है। यह आज्ञा किसी प्राकृतिक मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए दी गई थी। व्यवस्था परस्त्रीगामियों के लिए दी गई थी जो स्वयं को अशुद्ध करते थे। आज्ञाएं मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों, झूठी शपथ खाने वालों के लिए थी। मसीह को ग्रहण करने वालों का उद्धार व्यवस्था के अनुसार से नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह से है। वे व्यवस्था के जीवन आचरण से ऊंचे स्तर पर लाए गए हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको इस संदर्भ में 2 उदाहरण देना चाहता हूं जो मेरे विचार में आपके लिए सहायक मार्गदर्शक सिद्ध होगा। एक न्यायालय की कल्पना कीजिए जहां न्यायाधीश के समक्ष एक अपराधी खड़ा है। वह दोषी है और उसे जुर्माना देकर जेल भी जाना है, परंतु न्यायाधीश कहता है, मेरा पुत्र इस अपराधी से प्रेम करता है और वह इसका जुर्माना देने को तैयार है तथा इसके स्थान पर जेल जाने की शपथ लेता है। अब उसका दंड तो पूरी तरह चुका दिया गया है, इसलिए मैं इस अपराधी को अपने घर ले जाता हूं और उसके साथ अपने पुत्र का सा व्यवहार करूंगा। अब वह न्यायाधीश जब उसे अपने घर ले जाता है, तब वह न तो कहता है तू चोरी मत करना, न ही कहता है तू हत्या मत करना। वह अपराधी उसका पुत्र हो गया है, इसलिए वह अब उससे कहेगा कि वह परिवार के अन्य सदस्यों से प्रेम करे, खाने के तख्त पर कैसा व्यवहार करे, उसकी पत्नी का आदर करे और घर के कामों में भी हाथ बटाए। इस प्रकार आप देखते हैं कि उसके साथ पहले से सर्वथा भिन्न व्यवहार किया जाता है। परमेश्वर विश्वास लाने वाले एक पापी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता है। हम व्यवस्था से ऊपर वरन उसके परे हैं। व्यवस्था तो एक अपराधी के लिए है। व्यवस्था पुराने स्वभाव, पुराने चरित्र, देह को वश में रखने के लिए है। मेरे मित्रों, एक महान प्रचारक अपने साथ एक विश्वासी को किसी सभा में ले गए जहां व्यवस्था और अनुग्रह के विषय में एक उलझा हुआ जनसमूह उपस्थित था। वे मसीही जीवन में व्यवस्था के स्थान के विषय में विमूढ़ थे। उस विश्वासी ने उनसे कहा, मैं यहां रेल से आया हूं और रास्ते में एक स्टेशन पर हम घंटों देर रुके रहे। वहां स्टेशन के विश्राम कक्ष की दीवार पर मैंने चेतावनी पढ़ी, लिखा था कृपया फर्श पर ना थूकें। वह वहां का नियम था। मैंने फर्श को देखा तो मुझे यह बोध हुआ कि उस चेतावनी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि चारों तरफ थूका हुआ था। परंतु जब मैं यहां पहुंचा तो मुझे एक प्रिय परिवार में ठहराया गया। वहां मैंने दीवारों पर आकर्षक चित्र देखे, परंतु फर्श पर न थूकने की चेतावनी वहां पर कहीं लिखी हुई दिखाई दी और न ही कुछ और चीजें। मैंने झुककर गलीचे पर हाथ फेरा, किसी ने वहां नहीं थूका था। उस स्टेशन पर नियम लिखा था, परंतु मैं जिस घर में ठहरा था वहां अनुग्रह था। मेरे प्रियो, मनुष्य नियम पालन नहीं करता है, वह बार बार नियम तोड़ता है। अनुग्रह के अधीन मनुष्य परमेश्वर के परिवार का सदस्य होता है। वह न तो हत्या करेगा और न ही झूठ बोलेगा। यदि वह ऐसा करेगा तो वह निश्चय ही परमेश्वर की संगति से दूर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, खरे उपदेश के सब विरोधियों। पौलुस यह वाक्यांश इसलिए जोड़ता है कि कहीं उसने कुछ छोड़ ना दिया हो। इसमें वे सब पाप आ जाते हैं जो संयोगवश उससे छूट गए हों। आइए अब हम देखें पौलुस की व्यक्तिगत गवाही। पहला तीमुथियुस की पत्री 1:11 में लिखा है, यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। यह भी उन अद्वितीय उक्तियों में से एक है जो पौलुस इस युवक को विशेष करके लिखता है, और यह कलीसियाओं को लिखे उसके पत्रों में नहीं पाई जाती है। सुसमाचार को संबोधित करने की क्या यह एक अति उत्तम विधि नहीं है? तो आइए हम पढ़ें 1:12 में, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का धन्यवाद करता हूं। पौलुस प्रभु यीशु की प्रभुता पर बल देता है। आगे कहता है, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। आज सेवा का अर्थ बहुत गलत समझा जाता है। सब विश्वासी सेवा में हैं। यदि कोई परमेश्वर की संतान है तो वह सेवा में है, वह सेवा से बाहर नहीं है। पौलुस सेवा के लिए जो शब्द यहां पर काम में लेता है वह वही शब्द है जो हम सेवक के लिए काम में लेते हैं। और प्रत्येक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का सेवक है। कई बार कलीसिया में सदस्य यह सोचते हैं कि परमेश्वर का दास ही केवल सेवक है और हम सब सिर्फ उसके अंग हैं। जी नहीं, आप भी परमेश्वर के सेवक हैं। पौलुस तो शासकों को भी परमेश्वर के सेवक कहता है। हम कहते हैं कि हमने किसी को किसी पद पर रखा है या उसे चुना गया है, परंतु मेरे विचार में कभी कभी परमेश्वर किसी पद के लिए किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव निरस्त कर देता है। शासकों को भी परमेश्वर के सेवकों की नाई सेवा करना है। पौलुस परमेश्वर का आभारी था कि उसने उसे सेवा के लिए ठहराया। प्रत्येक विश्वासी के लिए परमेश्वर की सेवा का कोई तो उत्तरदायित्व है। पहला तीमुथियुस के पत्र 1 अध्याय उसके 13 पद में लिखा हुआ है, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। पौलुस कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला था। पौलुस इस भयानक शब्द को काम में लेता है क्योंकि वह प्रभु यीशु की निंदा करता था और उससे घृणा भी करता था। मेरे विचार में वह यीशु को क्रूस पर चढ़ाते समय वह वहां था और उसकी निंदा कर रहा था। पौलुस कहता है कि वह एक निंदक था, सताने वाला था और उसने कलीसिया को बहुत अधिक हानि पहुंचाई थी। फिर वह कहता है, तो भी मुझ पर दया हुई। अपने उद्धार के विषय में वह कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसका उद्धार हुआ है और परमेश्वर की दया के कारण वह सेवा के लिए चुना गया है। मेरे प्रियो, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि परमेश्वर ने मुझे वचन के प्रसारण की सेवा क्यों दी। यदि आप मेरी युवावस्था में देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैं कभी भी इस सेवा में नहीं आता। मैं कभी इसके बारे में सोच भी नहीं पाता। मैं कभी भी सेवा करना नहीं चाहता था। ऐसी कोई बात नहीं थी जो मुझे सेवा के निमित्त अच्छी लगती। परंतु मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अपनी दया में मुझे यह सेवा सौंपी है। वह दया का धनी है और मैंने अपने जीवन में उसकी दया का बहुत उपयोग किया है, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। पौलुस की यह दशा थी, हम सब की भी यही दशा है। विश्वास में आने से पूर्व हमारी यही दशा थी। क्या आज आप चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर की उस दया के अधीन हो जाएं? तो मेरे मित्रों, आइए प्रभु के पास ताकि आप भी उस दया का आनंद ले सकें। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। पौलुस के उद्धार का कारण परमेश्वर का अनुग्रह था जिसके द्वारा वह विश्वास और प्रेम के स्थान पर पहुंचा जो मसीह यीशु में है। जी हां, यही बातें एक विश्वासी के जीवन में प्रकट होना आवश्यक है। पहला तीमुथियुस के पत्र 1 अध्याय उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, यह धर्मशास्त्र का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि यह पुष्टि करता है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। यदि आप ये सोचते हैं कि आप पापी हैं, तो आप ये जान लीजिए कि प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए ही इस जगत में आया। वह इसलिए नहीं आया था कि संसार का सबसे बड़ा गुरु कहलाए, जबकि वह था। वह नैतिकता का आदर्श स्थापित करने के लिए नहीं आया था, कोई धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया था। वह संसार में इसलिए आया कि पापियों का उद्धार करे, पापियों का उद्धार हो। मेरे प्रियो, गवाही देते समय ध्यान दें कि आप ध्यान रखें कि अपना बड़प्पन और अपनी उपलब्धियों की चर्चा ना करें। बस आपको यही बताना है कि आप एक पापी थे और प्रभु यीशु ने आपको बचा लिया, यही महत्वपूर्ण है। पौलुस कहता है कि जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं, अपने आप को वह सबसे बड़ा पापी बताता है। पौलुस बढ़ चढ़कर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वह सच में कह रहा है कि वह पापी था। वह प्रभु यीशु की निंदा करता था, उसे बुरा भला कहता था। अब वह कहता है पर, अब पौलुस कहता है मुझ पर दया हुई। प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए आया था। यदि आप कहें मेरे विचार में प्रभु मुझे नहीं बचा सकता क्योंकि मैं एक पापी हूं, एक महान पापी हूं, तो आप गलत हैं। पौलुस कहता है कि वह सबसे बड़ा पापी था और वह बचा लिया गया है। अतः यदि आप चाहें तो आज भी आप बचाए जा सकते हैं। अब निर्णय आपका है। आपको जो करना है वह बस प्रभु यीशु को ग्रहण करना है, उस पर विश्वास करना है कि वह आपका मुक्तिदाता है। बाकी सब काम वह स्वयं कर लेगा। वह विश्वास योग्य है। पौलुस कहता है यह बात सच है। पहला तीमुथियुस की पत्र 1:16 में लिखा है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। कहता है पर मुझ पर इसलिए दया हुई। देखिए, उसे प्रचारक बनने के लिए, एक सेवक बनने के लिए परमेश्वर की दया की आवश्यकता थी। मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। पौलुस के कहने का अर्थ है कि वह एक सुसमाचार प्रचारक ही नहीं, सुसमाचार का एक आदर्श भी था। पहला तीमुथियुस 1:17 में लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। पौलुस अपने स्तुति गान के बिना आगे नहीं बढ़ पाता था। यह सनातन राजा कौन है? वह प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु कौन है? वह एकमात्र सर्वज्ञानी परमेश्वर है। अब आप मुझसे यह न कहें कि पौलुस प्रभु यीशु को परमेश्वर नहीं कहता है। पौलुस उसे देह में प्रकट परमेश्वर मानता था और वह उसकी गवाही भी देता है। हम आगे देखते हैं तीमुथियुस के कार्यभार को सौंपना। पहला तीमुथियुस के पत्र 1:18 में लिखा है, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। मेरे मित्रों, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। कहता है, हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं। यद्यपि यह पत्र व्यवहारिक है और स्थानीय कलिसिया तथा तीमुथियुस के उत्तरदायित्व से संबंधित है, यह पौलुस और तीमुथियुस के अद्भुत संबंधों को भी प्रकट करता है। यह प्रभु की सेवा में युवा तीमुथियुस के लिए पौलुस की व्यक्तिगत आज्ञा है। कहता है, पुत्र तीमुथियुस, वह पौलुस का आत्मिक पुत्र था। पौलुस के द्वारा ही उसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। पौलुस के द्वारा ही उसने सुसमाचार सुना और यही कारण है कि पौलुस उसे अपना पुत्र कहता है। आगे कहता है, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी। पौलुस में आत्मिक विवेक था और स्पष्ट है कि परमेश्वर ने पौलुस की अगुवाई की होगी। कि वह इस युवक को अपने साथ लेकर उसे आरंभिक कलीसिया में वह स्थान दे जो वहां पौलुस का था। आगे वह कहता है, तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। आपका मन न हो तो आपको युद्ध पर नहीं जाना चाहिए, जब तक कि आप किसी सच्चे कारण के निमित्त विजय पाने को युद्ध न करें। विश्वासी होने के कारण पौलुस का बैरी था, वह आत्मिक युद्ध में था और पौलुस चाहता था कि वह अच्छा युद्ध करे, अपने विश्वास को ध्वंस न होने दे जैसा आज अन्य विश्वासी कर रहे हैं और उस समय भी विश्वासी कर रहे थे। मेरे मित्रों, यहां पर कहने का मतलब यह है कि हमारा शत्रु इस संसार का नहीं है, परंतु हमारा शत्रु शैतान है जो अलग अलग रीति से हमें विश्वास में डगमगाता है। और यही कारण है कि पौलुस तिमोथियुस से कहता है कि वह अपनी आत्मिक लड़ाई में अच्छी तरह से लड़ता रहे। आज प्रश्न यह है कि क्या हम अपनी आत्मिक लड़ाई में सही रीति से लड़ रहे हैं? क्या हम अपने विश्वास में परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं या हम भटक रहे हैं? मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको भी तिमोथियुस की तरह पौलुस कहता है कि हम अपनी लड़ाई, विश्वास की लड़ाई अच्छी रीति से लड़ते रहें। तो आइए आज हम अपने जीवन में एक सही निर्णय लें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें, ताकि हम भी उस विश्वास की लड़ाई को सही रीति से लड़ सकें और आत्मिक जीवन में हम बलवंत होने पाएं। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक हो।